आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर किसान कल्याण वर्ष की प्रगति की जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में आधुनिक कैंसर ब्लॉक और विश्व स्तरीय रेडिएशन मशीन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में छात्रों से जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया। और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि भोजशाला मामले की नियमित सुनवाई से पहले स्थल का निरीक्षण करेंगे माननीय न्यायाधीश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर यादव ने विशेष रूप से प्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष की प्रगति साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर नई पहल कर रही है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान श्री यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में एक महत्वपूर्ण अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आयोजन प्रदेश में मनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों के मार्गदर्शन के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव लगाकर के सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, दिल्ली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े दृष्टि से काफी अच्छी कार्यशाला हुई। अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 क्रम संवत तक मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल है तो कल है के संकल्प के साथ प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। आगामी 19 मार्च को भारतीय नववर्ष के अवसर पर उज्जैन के शिप्रा तट से इस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो चरणों में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया है। अब 30 जून तक चलने वाले इस नए अभियान के तहत प्राचीन तालाबों, कुओं और बावड़ियों को जन भागीदारी के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल के एक निजी कॉलेज में एक आधुनिक कैंसर ब्लॉक और विश्व स्तरीय रेडिएशन मशीन का शुभारंभ किया। इस नए ब्लॉक में स्वीडन की अत्याधुनिक इलेक्ट्रा हार्मनी रेडिएशन मशीन के साथ साथ लीनियर एक्सीलरेटर और पेट सीटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के कैंसर मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि भोपाल के साथ साथ ग्वालियर, इंदौर, रीवा और जबलपुर में भी आधुनिक कैंसर ब्लॉक तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना के हरिपुर स्थित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI परिसर में विद्यार्थियों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक तकनीकी, नवाचार और भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि युवा शक्ति ही देश के नवाचार की असली शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल जॉब सीकर न बनकर जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लें।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनीज में मेरे बच्चे और बच्चियां आज इनरोल हो रही हैं, उनको जॉब ऑफर्स मिल रहा है। जिनको हमने आज पुरस्कृत किया, कोई रामपुर से है, कोई जोरी से है, कोई आसपास का गांव का है, कोई दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, भोपाल वाला नहीं है। और यही प्रधानमंत्री जी की भी सोच है, ग्रामीण अंचल में वो सारे अवसर हमको देने होंगे जो सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ल और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि नियमित सुनवाई शुरू करने से पहले माननीय न्यायाधीश स्वयं विवादित स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। अदालत ने आज पक्षकार बनने के लिए आए सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया है ताकि सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल सके। मामले की नियमित सुनवाई आगामी 2 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले मूल याचिकाकर्ताओं और फिर पक्षकारों को सुना जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्रालय के वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,337 स्टेशनों में से 160 स्टेशनों पर ही पुनर्विकास कार्य पूरा हुआ है। भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाया गया है और नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजट मात्र 63,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है।
वर्ष 2013-14 में भारतीय रेल का बजट 63,363 करोड़ था, जबकि वर्ष 2026 के बजट में भारतीय रेल के लिए 2,78,030 करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो बीते वर्ष में रेलवे क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2026-27 में भारतीय रेल का कुल आंतरिक राजस्व लगभग 3.2 लाख करोड़ अनुमानित था, जो 25-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 8.4% की वृद्धि को दर्शाता है।
साहित्य अकादमी ने आज 24 भारतीय भाषाओं के लिए वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए और प्रसिद्ध राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई बड़े शहरों में तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन 17 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से 18 और 19 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के आसार हैं। हालांकि विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल और मई के महीनों में ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों में पारा 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित वन परिसर में आज से 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजगढ़ के पीलूखेड़े स्थित ओसवाल डेनिम के ह्यूमिडिटी प्लांट में तकनीकी खराबी के चलते अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर जल्द काबू पा लिया गया। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक विभाग ने एआई आधारित फॉरेंसिक इंटेलिजेंस के प्रयोग से एक शव की पहचान करने में अपेक्षित सफलता हासिल की है। नीमच में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत धाखड़खेड़ी निवासी एक बालिका की निशुल्क सफल सर्जरी इंदौर के निजी चिकित्सालय में करवाई गई। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में 19 मार्च को हिंदू नववर्ष के अवसर पर सुबह सूर्य उपासना का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और देवास जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर किसान कल्याण वर्ष की प्रगति की जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में आधुनिक कैंसर ब्लॉक और विश्व स्तरीय रेडिएशन मशीन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में छात्रों से जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि भोजशाला मामले की नियमित सुनवाई से पहले स्थल का निरीक्षण करेंगे माननीय न्यायाधीश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।